सत्यसाई शुभ जननी जगत्कारणी परिपूरणी साईश्वरी जननी। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, गुड इवनिंग। माय हम्बल प्रणाम्स एट द लोटस फीट of our Jagat Janani Sai Ma. Women are the mothers of the coming generation. They are the teachers of that generation during the first 5 years of their life. The mother is first of the five matas that a child encounters. Deha Mata, she gives a part of her body and she raises the child in her womb for the 10 months. The next is Gomata. The next is Bhumata, Deshamata, followed by Vedamata. Let me start by thanking each and every one of my Sai brother and especially my Sai sisters who have taken so much of efforts to be a part of this enchanting evening of All India Mahila Convention in Prashanti Nilayam. I take immense pleasure in welcoming one and all present here. I would like to now call upon Srimati Deepti Gaur Mukherjee to present the report of the Mahila Vibhag. Srimati Mukherjee is an Indian Administrative Service Officer of the Batch 1993. Currently, she is the Commissioner of School Education Department in Madhya Pradesh. Srimati Mukherjee came into the fold of Sai at the age of 12. Both her parents have guided and involved her in various seva activities. Let's now put hands together to welcome our Sai sister, Srimati Deepti Gaur Mukherjee. Thank you.
श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और यहां उपस्थित सभी साई भक्तों को मेरा सप्रेम साई राम। आज जो मैं यहां पे खड़ी हुई हूं, ये मान के चलिए आज ये मेरा सबसे मुश्किल क्षण है। मेरे लिए सबसे मुश्किल मेरा ये आज संबोधन है। मेरे को 23 साल हो गए हैं सेवा में और मैंने अनेकों जगह पे अनेक बात की हैं, पर आज जो मैं आपके सामने खड़ी हूं, मुझे लग रहा है कि मुझसे छोटा इस पूरे हॉल में कोई नहीं है। मुझे याद है जब पहले मैं यहां आई थी तो यहां और उधर का मुझे डिस्टेंस 1 किलोमीटर दूर लगता था। जब बाबा हमारी तरफ देखते ही नहीं थे तो हम सब लोग रोते रहते थे। फिर हमें किसी हमारी जो साई आंटी ने उन्हें बोला कि वो जो गणेश भगवान बाहर हैं उनकी जाके चापलूसी करो तो शायद बाबा आपकी तरफ देख लें। तो हम सब बच्चे वहां जाते थे साई गणेश के सामने, नारियल वारियल फोड़ते थे, माथा टेकते थे और ये प्रार्थना करते थे कि बाबा आए और हमारी तरफ बस देख लें। पत्र लेना, पाद नमस्कार तो बहुत दूर की बात थी। हम लोग बहुत डिमोरलाइज भी हुआ करते थे, लगता था कि नहीं बाबा पहचानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है कि हम लोग यहां पे आए हैं, पता नहीं क्यों हम लोग आ रहे हैं, क्यों आते हैं। बट समहाउ जो हमारे आसपास जो हमारी साई आंटियां थी उन्होंने हमें धैर्य नहीं खोने दिया और ये बाबा की असीम कृपा है कि भले ही मुझे फिजिकल प्रॉक्सिमिटी से या फिजिकल दर्शन नहीं दिया हो बहुत बार, पर जो मेरे को उन्होंने अनेक तरीकों से जो गाइडेंस दी है, जो अनेक प्रकार से उन्होंने मुझे मेरे जीवन को एक दशा दी है, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ वो सिर्फ मात्र बाबा की ग्रेस से खड़ी हूँ, सिर्फ बाबा की आशीर्वाद की वजह से खड़ी हूँ। कल जो मुझे बताया गया था कि मुझे आज यहाँ बोलना पड़ेगा, तो मैंने बड़े उससे कह दिया हाँ हाँ बोल लूंगी। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे साहिब कुलवंत हॉल में बोलना है, मुझे लग रहा था कि शायद जो हमारा महिला सम्मेलन है वहां पे मुझे कुछ लोगों से बात करनी होगी। और फिर पूरी शाम मुझे इतना भय हुआ, मुझे इतना डर हुआ, दो तीन बार मैंने गोपी भैया से बोला, मैंने कहा आर यू श्योर मुझे साहिब कुलवंत हॉल में ही बोलना है, आर यू श्योर? वो भी बिल्कुल पीछे हाँ हाँ आपको यहीं बोलना है। तो अब मैं आपके सामने खड़ी हूँ, कोई भी मुझसे त्रुटि होती है, कोई भी मुझे गलत बोलती हूँ, प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। मुझे बिल्कुल ना इस प्रकार के कार्यक्रम में बोलने का कोई अनुभव है, ना कोई मेरी बहुत जानकारी है, ना कोई मुझे बहुत नॉलेज है, बस मैं आपके साथ में अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। और आज जो मुझे विषय दिया गया है महिला सशक्तिकरण, उस संबंध में मैंने जो बाबा की टीचिंग से और उनके मैसेज से, उनके जो उनका लाइफ इज मिशन, आई मीन जो उनका मिशन का मैसेज है, जो उनके लाइफ का जो मैसेज है, उससे जो मैंने सीखा है इस पर्टिकुलर विषय पे, उसके कुछ अनुभव आपके साथ आपके सामने रखूंगी। और मुझे आशा है कि हो सकता है आपको उसमें से कुछ रेलिवेंट लगे, हो सकता है आप भी कुछ मुझसे सहमत हों। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगी, ये जो शब्द है महिला हम सब जानते हैं, सशक्तिकरण। स का मतलब क्या है? स का मतलब है सहित। शक्ति, शक्ति का आशय क्या है? शक्ति का आशय यह है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चा हो, वो अपने निर्णय लेने हेतु न केवल सक्षम है, यदि कॉम्पिटेंट है, परंतु वह स्वतंत्र हो। ही और शी इज इंडिपेंडेंट। ये है शक्ति। और करण, करण यानी कि क्रिया या करना, यानी कि इस चीज को कराना। तो हम जो यहां बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं महिलाओं को वो शक्ति देने की बात कर रहे हैं कि वो अपना निर्णय स्वयं ले सके, स्वतंत्रता से ले सके। उनके भीतर जो विभिन्न प्रकार की प्रतिभाएं हैं, न केवल हो सकता है आप एडुकेशन, आई मीन आप शैक्षणिक फील्ड में बहुत अच्छे हों, आप गाने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं। हमारी साक्षी मलिक है, पीवी सिंधु है, इन सब से हम इंस्पिरेशन लेते हैं। तुम्हारी अलग अलग, आज सुबह जब हमारा भजन हो रहा था तो आपने नोटिस किया होगा कि पूरे भजन में, चाहे वो गाना हो, चाहे हमारी ढोलकी हो, चाहे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, सब हमारी महिलाओं ने बजाए थे। अपने आप में वो कितनी बड़ी बात थी कि देखिए महिलाएं बजा रही हैं। तो प्रतिभा अनेक प्रकार की है, हमें बस मौका देना है उस प्रतिभा को ऊपर आने का, निखारने का, उसको पहचानने का। आज सभी ने एग्जीबिशन भी देखा है, और अगर मैं इस एग्जीबिशन को थोड़ा सा इसका निचोड़ निकालना चाहूं, तो मैं सशक्तिकरण को यह कहना चाहूंगी कि यह साई शक्तिकरण है। कैसे साई शक्तिकरण? हमने जब एग्जीबिशन देखा तो हमने देखा वहां शिक्षा की बात हो रही थी, फिर हमने देखा कि वहां इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात हो रही थी, आत्मनिर्भरता की बात हो रही थी, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और जो इस पूरे साई प्रोग्राम, साई सत्य साई सेवा संगठन का जो मूल, इसका जो फाउंडेशन है और हमारी मूल रीढ़ की हड्डी है इस पूरे प्रोग्राम की, वो है हमारा आध्यात्मिक उन्नयन और हमारा इमोशनल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। मुझे लगता है ये तीन जो, जैसे यहाँ पे कैमरा है यहाँ पे, और कैमरा की जो आई है, इसके थ्री ट्राइपॉड्स हैं, ये जो तीन हम बातें कर रहे हैं, शैक्षणिक और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट द आध्यात्मिक उन्नति है, ये हमारे महिला सशक्तिकरण का या साई सशक्तिकरण का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मूल, इसका मेरे समझ से इसका ये रहस्य है। और मुझे सिर्फ 5 मिनट का टाइम दिया है, तो मैं अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाऊं तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। जो पहला बात हमने की, शिक्षा की बात की, और यहां मैं अपनी कुछ एक छोटा सा एक अनुभव आपके सामने रखना चाहती हूं। मैं यूपी की रहने वाली हूं और मेरा जो शादी हुई है वो बंगाली परिवार में हुई है। और यूपी की बहुत ट्रेडिशनल, वेस्टर्न यूपी की फैमिलीज हैं, बहुत ट्रेडिशनल होती हैं, उनका एक माइंडसेट होता है। और मैंने ये देखा जब मेरी दादी हमारे आया करती थी, तो दादी से मैं पूछा करती थी कि दादी आप इतना धीरे धीरे क्यों पढ़ती हो, आप पूरा फ्लुएंटली क्यों नहीं पढ़ती हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा मेरी शादी जब हुई तो मैं बिल्कुल अनपढ़ थी, फिर बच्चे हो गए, मैं कुछ नहीं कर पाई, तो मैंने तुम्हारे फादर और ताऊजी के साथ लिखना पढ़ना सीखा, राख पे मैं लिखती थी और राख को मिटा के फिर मैं सीखती थी। और देखिए उस महिला का साहस कि उन्होंने मुझे शिव पुराण और भगवत कथा सुनाई है, ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। दूसरा एग्जाम्पल, हमारे यहां बंगाली में कहते हैं ठाकू मां, ठाकू का मां मतलब होता है दादी, तो जो मेरी ठाकू मां है, ददिया सास है जिसे कहते हैं, वो काफी बहुत ही मॉडर्न विचारों की हैं, पर उनकी भी शादी 12वीं में हो गई थी, पर वो मैथ्स में बहुत अच्छी हैं, साइंस में बहुत अच्छी हैं, तो उनको लगा कि भाई मेरे ये जो प्रतिभा है ये कहीं दबी नहीं रहनी चाहिए, मैं सिर्फ बच्चों को अपने भी पढ़ाऊंगी पर मुझे और जानना है इसके बारे में। तो विश्वास कीजिए उन्होंने मेरी बुआओं के साथ में अपना बीएससी किया, शी डिड हर बीएससी एंड बीएड विद माय बुआज, एंड ये मेरे बुआओं की बहुत ही बड़ी बात है कि उनको शर्म नहीं आई कि उनकी मदर उनके साथ पढ़ रही है। पर दादी ठाकुर माँ ये एग्जाम्पल है हमारा। आज हालांकि ये हालात नहीं है और बहुत जगह पे हमारी बच्चियां हैं वो पढ़ने जाती हैं, पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ मेरा जो एक्सपीरियंस है कि ऐसे भी बहुत प्रदेश हैं, मेरा खुद का प्रदेश है मध्य प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, जहां इलाके ऐसे हैं जहां लड़कियां या तो पढ़ने जाती नहीं है, और अगर जाती हैं तो वो सिर्फ एक रस्म अदायगी होती है, वो जाती हैं यूनिफॉर्म लेने के लिए या मध्याह्न भोजन खाने के लिए, पर वहां वो पढ़ती नहीं। ये चीज मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूं। जब मैं कलेक्टर दतिया थी, दतिया एक बहुत छोटा सा शहर है बुंदेलखंड का है, अगेन बहुत ही फ्यूडल मेंटेलिटी है वहां की, इट हैज वन ऑफ द लोएस्ट सेक्स रेशियोज इन द कंट्री, बहुत ही वो है। तो मैं एक स्कूल में गई जहां लड़के लड़कियां दोनों बैठे हुए थे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि लड़कियां बहुत संख्या में थी, बहुत अच्छी लग रही थी, सब में तेल लगा हुआ था, सबने अपने यूनिफॉर्म पहन रखी, किताबें सब खोल के रखी थी। अब जैसे जब कलेक्टर जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो पेंटिंग पुंटिंग होती है, लोग छुपाते हैं या सही बताते नहीं है, तो उनको लगा कि मैडम आएंगी और चली जाएंगी, पर मेरे को बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बैठी उनके साथ में, मैंने पूछना शुरू किया, मैंने कहा बताओ तुम्हें गणित में क्या आता है, बताओ तुम्हें साइंस में क्या आता है, प्रश्न नहीं पूछा, उनके साथ बैठ के पूछना चाहा कि क्या आता है। तो मुझे लगा, मुझे पता, मैंने एहसास किया कि जो लड़के हैं और लड़कियां हैं उन दोनों के लेवल्स में बहुत फर्क है। मैंने कहा ऐसे तो हो नहीं सकता कि लड़कियां कमजोर हैं, इनको दिमाग कम है, ऐसा हो नहीं सकता, वैसे भी दिमाग किसी कम नहीं होता, लर्निंग करने की गति अलग हो सकती है। तो मुझे लगा ये क्या हुआ, तो फिर मैंने लड़कियों से पूछा, मैंने कहा बेटा ये बताओ तुम घर में जाके करती क्या हो, और मेरा दिल दहल गया क्योंकि हम लोग प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड के हैं, हम लोग इसका एहसास नहीं कर सकते। उन्होंने ये कहा कि हम जो पढ़ते हैं ना सिर्फ स्कूल में पढ़ते हैं, जब हम घर जाते हैं तो या तो हम सब्जी बेचने जाते हैं, और ये जो स्कूल है इसके सामने सब्जी मंडी है, यहां मैं शाम को रोज आती हूं। तो मैंने कहा तुम्हारा भाई, कि नहीं भाई ट्यूशन लेने जाता है, ये फर्क है। तो मैं आपसे, आप जो सेवा दल पूरे यहां पे इतनी बड़ी संख्या में यहां उपलब्ध है, यहां बैठे हुए हैं, मैं आपसे सिर्फ ये थोड़ा सेंसिटिविटी, आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगी कि जब भी हम किसी स्कूल में जाएं या शिक्षा की गतिविधियां लें तो हम जरूर ये देख लें कि लड़कियों को वही अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं जो उनके भाइयों को मिल रही हैं। और इस संबंध में बाबा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेइंग है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। बाबा ये कहते हैं, ये इनका डिवाइन डिस्कोर्स है 2001 का, There is nothing in this world that women cannot achieve. Recognizing the nature of women, we must encourage them and give them equal opportunities in society. So equal opportunities does not mean only taking a girl child to a school. It also means giving her the appropriate environment or that environment which is available to all the others who are in our household. So I would request all of you here who are here that when you're doing your activities, please keep this in mind. And I would also request that in your own personal houses, if you can just keep it in mind, कि हमारे बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है. मैं बहुत ही सौभाग्य है कि मेरे घर में मेरे पिताजी और माताजी ने हम दोनों में कभी फर्क नहीं किया. अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे पास भी भगवान की दया से, और ये प्योरली भगवान की दया है, नहीं तो मैं आज मुझे माँ का जो सुखद अनुभव है वो कभी नहीं मिलता. उनकी वजह से मेरे पास मेरे को एक बेटी भी है और बेटा भी है, और मैं हमेशा ये बात ध्यान में रखती हूँ कि दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए. तो मेरा आपसे भी अनुरोध है कि यदि इसमें आप लोग देखें तो ये बहुत अच्छा होगा. अब दूसरी बात पे आते हैं और वो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, यानी कि आर्थिक आत्मनिर्भरता. आज आप लोगों ने बहुत कुछ संबंध में देखा है, आपने हैंडीक्राफ्ट देखा है, हैंडलूम्स देखा है, बहुत चीजें देखी हैं, और मुझे इसका महत्व पे ज्यादा इस पर जोर नहीं डालना है. हम सब जानते हैं कि यदि बेटी या हमारी जो महिला है वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगी तो उसके अपने लाइफ पे कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा, और उसको एक आत्मसम्मान मिलेगा. यहां मैं जो बात आपसे करना चाह रही हूं वो है एक चैलेंज के रूप में. जितनी भी महिलाएं काम करती हैं उन्हें कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक वर्क और होम का एक डायलेमा आता है. चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे वो सर्विस हो, और चाहे यदि आपने नोटिस किया होगा जब आप अंदर घुसते हैं आश्रम में गणेश टेम्पल के सामने, तो कुछ लेडीज गजरा बेचती हैं और नारियल बेचती हैं, और जो डायलेमा उनके सामने है वही डायलेमा आपके और मेरे सामने है. यहां बाबा का एक जो वाक्य है जो हम मेरे दिमाग के मस्तिष्क में हमेशा बैठा रहता है, और मुझे बहुत मुश्किल होती है उसको पूरी तरह उसका अनुपालन करने में. और बाबा हमेशा ये कहते हैं सब जरूरी है, महिलाएं बाहर जाएं काम करें बहुत अच्छा है, पर घर सबसे जरूरी है. द होम इज द प्रायोरिटी. वी आर ऑल वेरी वेल रेड, वी ऑल हैव डन हिस्ट्री. तो आपने एक नोटिस किया होगा जब रानी झांसी लड़ने गई थी तो उनके पीठ पे कौन था? बच्चे का नाम दामोदर राव. दत्तक पुत्र को पीठ पे बिठा के जंग लड़ने गई थी. इसी प्रकार हमें अपना जो वर्क की जो कमिटमेंट्स हैं और जो होम के कमिटमेंट्स हैं दोनों को साथ लेकर चलना है. मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि जब हम लोग की जो सर्विस होती है वो काफी कष्टदायी होती है. बहुत सिचुएशंस में जब हम मना नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कर सकती कि मेरा बेटे को भूख लग रही है इसलिए मैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखने नहीं जाऊंगी, मैं ये नहीं कह सकती कि यहां आग लगी है पर रुक जाओ पहले जाओ मैं अपनी बेटी को पढ़ा लूं, ये मैं नहीं कह सकती क्योंकि जो वहां लोग फंसे हुए हैं उनके भी बेटा बेटियां हैं. पर मेरे लिए फिर भी चीजें आसान हैं क्योंकि मेरे पास सपोर्ट है. मेरे पास मेरी माँ है, मेरी सास है, मेरे ससुर थे, और बहुत सारे लोग हैं, हेल्पर्स हैं घर में जो मेरी मदद कर सकते हैं. पर ये सबके पास में नहीं है. जो लेडी बाहर बैठ के नारियल बेच रही है, या जो गजरा बेच रही है, या जो बाई आपके घर में काम करने आती है, या अगर आप ऑफिस में हैं तो जो आपके बाबू है या क्लास फोर है जो सुबह खाना बना के आती है, पूरा दिन भर काम करती है, फिर घर वापस जाती है फिर खाना बनाती है, उसका प्रेशर समझिए. उसको किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, उसके प्रति कैसे हम कंपैशन रख सकते हैं, ये आप प्लीज अपने अपने लाइफ में जहां आपको लगे आप प्लीज इसके बारे में सोचिए. जहां तक मेरा सवाल है, मैंने जरूर ये प्रयास किया है. लोग हमेशा कहते हैं कि लेडीज डोंट मेक गुड बॉसेस, स्पेशली इफ यू हैव अ लेडी अंडर यू, है ना. ये हम लोग सुनते हैं कि लेडीज अच्छी बॉस नहीं होती हैं, बहुत तंग करती हैं, बहुत परेशान करती हैं. पर समहाव मैंने बाबा का हमेशा ये जो वाक्य हमेशा ध्यान में रखा है, और मैं ये जरूर प्रयास करती हूं कि मैं अपने जो भी लेडी मेरे साथ काम करती है, दिनस काम करती है, उसको कभी भी ऑफिस आवर्स के बाद कभी रुकने को नहीं कहती, कभी ऑफिस आवर्स के बाद कभी नहीं बुलाती उसको, क्योंकि उसकी जो मजबूरी है, उसकी जो प्रॉब्लम है, उसको हमें समझना चाहिए. वी हैव टू अंडरस्टैंड इट. और यहां अगेन मैं अगेन आपको एक और जो मेरे दिमाग में आता है, हो सकता है ये केवल मेरा इंटरप्रिटेशन हो, अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जब हम यहां आते हैं हम लोग सेवा देखते हैं या कोई भी गतिविधि करते हैं साई ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमारे जो साई भाई हैं और साई बहनें हैं वो वही काम अलग अलग ढंग से करते हैं. वही झाड़ू, वही किचन है ना, वही बाल विकास, कोई फर्क नहीं है, तो फिर घर में फर्क क्यों? तो जब हम लोग घर जाएं, जब हम किससे इंटरैक्ट करें, जब अपने घर जाएं, अपने बेटी के घर जाएं, अपने फ्रेंड के घर जाएं, जब हम बाल विकास करें, तो ये बात जरूर आनी चाहिए कि जो पुरुष है, जो हमारे साई भाई हैं, या वो तो करते ही होंगे, पर जो पुरुष हैं वो इक्वल हाथ बटाएं। जब महिला धक्के भाव से काम करके घर जाती है, तो यदि पुरुष उसकी थोड़ी मदद कर देगा तो वो कंपैशन है, वो वीकनेस नहीं है। एंड टू शो दैट वीकनेस, हेल्पिंग योर वाइफ और हेल्पिंग योर सिस्टर इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस बॉयज, इट्स नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, इट्स अ साइन ऑफ कंपैशन, एंड दैट इज व्हाट बाबा टेल्स अस। थर्डली एंड फाइनली, सबसे महत्वपूर्ण जो है आध्यात्मिक और भावनात्मक सशक्तिकरण, यहां अगेन मेरे हिसाब से बहुत चीजें हैं कहने के लिए, पर मैं अपने आप को लिमिट करूंगी दो या तीन मुख्य चीजों की, जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सरेंडर, गीता में भी कहा गया है, हमें सब कहते हैं सरेंडर। सरेंडर का मायने क्या है, क्या कन्वीनियंट सरेंडर है, क्या इनकन्वीनियंट सरेंडर है? जब मैंने अच्छा किया तो मैंने किया, जब मैंने बुरा किया तो हाय भगवान तूने क्यों करा दिया। दूसरा, सरेंडर कम्स विथ फेथ। द सेकेंड इज डिस्क्रिमिनेशन, विवेक, निर्णय लेने की क्षमता, टू सी प्रोज एंड कॉन्स क्या है। और वो डिस्क्रिमिनेशन मेरे हिसाब से तब आता है जब हम कंप्लीट सरेंडर करते हैं और कंप्लीट इक्वानिमिटी से जो हमारे हाथ आए उसको लेते हैं। अगेन अ कपल ऑफ पर्सनल एग्जाम्पल्स, मेरे बारे में बताया गया, जैसे मैं बता रही थी कि जब मैंने शुरू किया तो मुझे लगा कुछ तो कुछ गड़बड़ होगी, और इसीलिए शायद वो जब शुरुआत की तो कहा कि मैं महिला विभाग का रिपोर्ट देने वाली हूं, पर बचा लिया। तो जब हमने शुरू किया, मैं 12 साल की उम्र से लगभग हम लोग बगदाद में थे, और मुझे इस फोल्ड में लाने के लिए एक बहुत ही प्रेमी आंटी थी जिसका नाम था जसपाल आंटी, एंड शी टॉट मी अ न्यू वर्ड। पहले हम लोग हाय एंड बाय किया करते थे, पर जब हम आंटी से मिले तो आंटी ने हमें सिखाया साई राम। शी टॉट अस साई राम क्या होता है, उन्होंने हमें बताया भजन क्या होता है। और पता है हमें उन्हें क्यों पसंद करते थे? आज मैं यूथ के डिस्कशन में जा रही थी, मैं सुन रही थी, द रीजन वी चिल्ड्रन गॉट अट्रैक्टेड टू हर वॉज बिकॉज ऑफ हर लव एंड कंपैशन। शी वॉज ऑलवेज स्माइलिंग, और उनका हग वो ऐसा हग था कि मान लो आपको लगता है कि अगर इसमें घुल जाओगे तो आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यू वुड जस्ट गेट टोटली इनटू हर हग। वो जसपाल आंटी आज रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम बाबा के फोल्ड में आए। फिर जो मेरे जिंदगी में मेरे फादर तो बहुत महत्वपूर्ण थे ही हैं, थे मेरी मदर मेरे लिए मेरी सबसे बिगेस्ट रोल मॉडल है, बिगेस्ट रोल मॉडल, and I don't know whether I have the emotional strength to say this. Jab baba ne hame interview diya tha aur bless kiya tha, he blessed me with a child and he told me to come back the next year with my mother and father. Now my parents had been devotees of baba for years together, but they had never got a darshan. Bas jo seva dal mein aate the paad namaskar leke wapas jaate, kabhi interview nahi mila tha. Pata nahi us waqt kaise baba ne पहले ब्लेस किया फिर कहा कि अगले साल आओगी, एक तो अपने हाथ में छोटी सी बिटिया को लेके आना, सो आई वॉज ब्लेस्ड माई डॉटर, एंड देन ही सेड कम विद योर पेरेंट्स, सो आई केम विद माई पेरेंट्स। इसी कमरे में मुझे याद है कैसे मेरा दिल धकड़ धकड़ हो रहा था जब स्वामी ने मुझे इशारा किया था, अनिरुद्ध को इशारा किया था, हम दौड़ते हुए आए थे और स्वामी ने कुछ कहा था मेरे पेरेंट्स को। और जब यहां से हम वापस गए तो ये पाया कि मेरे फादर को ब्लड कैंसर है, ही वॉज डायग्नोस्ड विद मल्टीपल माइलोमा। नाउ दिस इज समथिंग जो किसी भी बेटी के लिए, किसी भी परिवार के लिए बहुत ही ट्रॉमेटिक एक न्यूज हो सकता है। और मैं यहां वो सरेंडर की बात पे आना चाहती हूं कि माय मदर, शी गेव 200% सरेंडर। आई सेड मां मैं जाऊं स्वामी के पास, जाऊं चिट्ठी लेके डैडी को क्योर करने के लिए? शी सेज नो। स्वामी ने हमेशा कहा है मुझसे मांगो मत, जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा वह तुम्हें तुमको दूंगा। और मेरी मदर जो इतनी ट्रेडिशनल, जिन्होंने कभी अपना चेकबुक खुद नहीं साइन किया, जो खुद अपने काम के लिए बाहर नहीं गई, हु टू डिपेंड माई फादर फॉर एवरीथिंग, शी हैड द स्ट्रेंथ, शी हैड द इमोशनल करेज, शी हैड द आध्यात्मिक स्ट्रेंथ टू से कि नहीं बेटा, जो करेगा भगवान ठीक करेगा, तुम पत्र देके एप्लीकेशन देकर मुझे शर्मिंदा मत करो. सो आई केम हियर विद नो एप्लीकेशन. मैं आई सिर्फ ये प्रार्थना करने के लिए भगवान से कि भगवान जो तेरी इच्छा, जो मेरे पापा के लिए अच्छा है, जो उनके लिए अच्छा है, आप कृपया करके वो करिएगा. और मुझे इतनी खुशी है, दुख तो बहुत है कि डैडी बहुत जल्दी चले गए, पर खुशी इस बात की है कि शायद भगवान ने जो हमें मैसेज दिया था, जो क्लियर किया था, शायद भगवान ने उनको अपने में बुला लिया, उनको समा लिया, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी गति हुई. हम लोग जो बहुत सदियों तक और जन्मों तक कर सकते हैं, यदि वो भगवान की ग्रेस से हो गया तो उससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती. आज भी जब मैं यहां पे आ रही थी तो शी इज नाउ 78 ईयर्स ओल्ड, अकेली रहती हैं नोएडा में, जो बहुत अच्छी जगह नहीं है रहने के लिए, और मैं भोपाल में आ गई हूं वापस. तो जब मैंने उनकी तबीयत खराब थी तो मैंने कहा उनको कि मम्मी क्या हुआ, तो शी सेज नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं जाती हूँ हॉस्पिटल, एंडोस्कोपी बोला है. अब आई एम नॉट अ साइंस पर्सन, आई डोंट नो व्हाट एंडोस्कोपी इज, सो आई लुक्ड अप द नेट कि एंडोस्कोपी क्या होता है. देन आई रियलाइज कि भाई तो बड़ा इन्वेसिव प्रोसीजर है. तो आई टोल्ड हर मम्मी ऐसा करते हैं कि मैं यहां नहीं आती हूं, मुझे यहां आना था परसों, मैंने कहा मैं नहीं आती हूं, आई विल कम फॉर योर एंडोस्कोपी. शी सेज खबरदार, आई हैव सरेंडर कंप्लीटली टू बाबा, जो होगा देखा जाएगा, पर तुम अपनी विजिट कैंसिल नहीं करोगी. एंड शी वेंट टू द हॉस्पिटल, शी गॉट हर एंडोस्कोपी डन, एंड टूडे आई डोंट नो, देखते हैं भगवान व्हाट ही हैज इन स्टोर फॉर अस. लास्टली एंड फाइनली, दिस इज फॉर माई यंग फ्रेंड्स, माई साई बहनास हु आर 20s इन their 20s एंड 30s. I have a small request to make of you. The time for you is now here. Hum log, we have passed our time. We have taken decisions. But for you, the time is now. And in that, jo Baba ki sayings hai, aur Baba ko jo aap apne man mein rakhoge, aur koi bhi decision lene se pehle, yadi aap ek baar apne dil ke andar jhaak ke प्रश्न पूछोगे, डिसीजन लोगे, तो यू विल नेवर गो रॉन्ग, यू विल नेवर एवर गो रॉन्ग. आप सब लोग शक्ति स्वरूपिणी हो, बिलीव इन योर सेल्फ. ओनली इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ कैन यू बिलीव इन गॉड, इज व्हाट स्वामी विवेकानंद सेड. Believe that you have the power and please be steadfast in your faith. You have so much of distraction these days, even boys do, but here since I'm talking about girls, you have so much of distraction, it is so easy to get waylaid. But always listen to the voice of your conscience, to the voice of God who's residing within your heart, and you will never go wrong. You can make a mistake, but you will not go wrong. Making mistakes is human. You can make mistakes. Don't be afraid of making mistakes. But please, you will never go wrong. Have the power to say yes for the right thing and no for the wrong thing, irrespective of who's standing against you, whoever it is. It can be your best friend. It can be your best teacher. It can be anybody. I'll end with a small anecdote of my own career. I was in a very important posting जहां मुझे बहुत बड़े बड़े tenders करने पड़ते थे, और as you know, tender making in government is not a very easy job. So मेरा ये आदत है कि जब भी कोई important file करनी होती है, या ऐसी कोई dicey file करनी होती है, या कोई ऐसी decision लेना होता है, तो मैं हमेशा करीब 10 मिनट के लिए वो file बंद करके सिर्फ चुपचाप सोचती हूँ. And I just think and I try to hear what Swami inside is saying to me, and then I take a decision. If I can't hear anything, I don't take a decision. I just close the file. I just close the chapter. So in this particular case, it was a very important tender, and मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ी जरूर है, पर क्या गड़बड़ी है मुझे पहचान नहीं आ रही थी. सब कुछ ठीक लग रहा था, फाइल सब कुछ ठीक थी, there were bids were fine, everything was fine, the time limit was there, everything was fine. पर क्यों पता नहीं मुझे कुछ लगा, मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर, कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है। एंड somehow मेरे को अंदर से आवाज आई, शायद बाबा कह रहे थे, उन्होंने कहा कि आज मत करना कल करना। एंड देन ऑफकोर्स आई हैड अ ड्रीम एंड बिलीव इट और नॉट स्वामी इन माई ड्रीम केम एंड टोल्ड मी स्पेसिफिकली कि टेंडर कंडीशंस में कहां कहां मेरे जो अधीनस्थ लोग थे, सबॉर्डिनेट्स लोग थे, गड़बड़ियां की थी। वेयर एग्जैक्टली वो द टेंडर कंडीशंस, जहां पे इफ आई हैड साइन दैट फाइल आई प्रोबेबली वुड हैव बीन इन जेल। सो दिस इज द पावर ऑफ साईं बाबा, दिस इज द पावर ऑफ स्वामी। ही इज विद इन यू, ही इज विद इन आवर हार्ट्स। वी ओनली हैव टू ओपन आवर हार्ट्स टू हिम, we only have to believe in him and rest he will look after us। jai sai ram।
thank you so much deepti ma'am, aapne apna sara pressing personal needs ke bawajood idhar aaye, hum sabko apna raaye bataya mahila vibhag ke bare mein। thank you so much ma'am। I was so shocked when you took a simple example of a tripod and explained so nicely about how strong women can be। no wonder people like you are the pillars of Indian constitution। let's hear it once more for this wonderful lady। I was reminded of a little anecdote from Swami। women are the makers of the home, the nation and the world। you are the mothers who shape the generation। so enshrine in your hearts the spiritual urge towards light and love, wisdom and bliss। we now have an extensive list of such wonderful women who have been trailblazers in the field of service and humanity, who have proved that Nari Shakti and women empowerment can be achieved by simple and balanced lifestyle। it is our honor and privilege to introduce these awardees tonight। I request Mrs. Madhu Kapani, director, Sri Satya Sai Institute of Higher Learning Puttaparthi to kindly come Anandpur campus to kindly come and honor the awardees। and I also request my Sai sisters Sachi Bamba, Nandika Sharma and Riddhi Tharir to kindly give a brief introduction of the awardees। thank you।
I would like to call upon Mrs. Bharti Chakravarti from Uttar Pradesh। Mrs. Chakravarti started Bal Vikas in Lucknow in 1978। She has attended all the training camp in Prashanti Nilayam। She is working as a Bal Vikas trainer since 1980 and has trained many gurus। Mrs. Chakravarti has worked as a Mahila coordinator at district level in 1980। Next we have with us Mrs. Uma Joshi from Uttar Pradesh। Shrimati Uma Joshi came into Swami's divine fold in 1985 and started working with the organization from 1988। She has taken Bal Vikas training in 1990। She started Samiti in Narendra Nagar in 1988 with a few ladies and made the entire town involved in Bal Vikas, bhajans, Nagar Sankirtan, Narayan Seva and Gram Seva। I would now like to congratulate Mrs. Thongchum Imbeni Devi from Manipur. Mrs. Imbeni Devi attended an international women's conference for their pilgrimage to spiritual freedom in 1980. She was blessed with the removal of a chronic ailment by Bhagwan Sri Satyasai Baba in a personal interview in 1976 at Vrindavan Wildfield. She was also appointed as a spiritual coordinator for Manipur in 1999. Srimati Imbeni Devi is also an active member of Mahila Vibhag at the ripe old age of 75 years. Now I would like to call upon Mrs. Snehlata from Himachal Pradesh. Mrs. Lata specializes in temple service and prepares Bhajan Mandir to perfection beyond compare. She manages a Sri Satya Sai Vocational Center as a manager, teacher and assistant to two students teaching sewing, knitting and various other activities. Next, we have with us Mrs. Sondarya Krishnamurthy from Tamil Nadu. Mrs. Krishnamurthy has been in the organization of Sri Satya Sai Baba for nearly 40 years and is still continuing as a state Mahila spiritual coordinator in Tamil Nadu. Having been practicing as an advocate in the Madras High Court, she opted out of practice to raise her two sons. She also has the opportunity to utilize her education time and talent to give fillip to Balvikas presentations in Tamil Nadu.
Next, may I call upon Mrs. Puspa Agarwal, who is our next awardee. She, along with her few devotees, started Balvikas in Punjab. She is considered as the founder of Balvikas movement in Punjab. In 1981, she was appointed as the state education coordinator and served the organization for 33 years. Her contribution in the field of seva and other activities is immense. The next award goes to Mrs. Binapani Saikya from Assam. She is a Balvikas guru since 1976. Not only that, she also conducted Balvikas classes regularly at the Harijan colony in Guwahati from 1992 to 2008. With Swami's grace, she had the privilege of attending Guru Conference at Whitefield and Prasanti Nilayam in 1994 and 2005 respectively. Mrs. Binapani Saikya also held Sari Center at home and in other Sai families' home for several years. Next, may I call upon Srimati Jharna Sarkar, who joined Sri Satya Sai Seva Organization in 1976. Srimati Jharna Sarkar is a Balvikas guru and an active worker in the Sai organization for the last 40 years. She is also a Balvikas guru trainer for the last 35 years. Presently, she is the state education coordinator of Sri Satya Sai Seva organization in West Bengal. We are delighted to have amongst us Dr. Mohini Bala Mathur, who is a national awardee from the Government of India for the best trainee at National Institute of Health and Family Welfare, Delhi, 1971. She worked in different positions at Health and Welfare Training Center and later retired as the principal of the training center. She is an active member of the Samiti and has worked in the Sai organization in various capacities and still continues to do so. The next award goes to Mrs. K. Vasumati Devi from Puttaparthi, Andhra Pradesh. Her contribution to Bal Vikas, Sevadal and Spiritual Wing programs of Sri Sathya Sai organization in the district level as well as state level is really commendable. Mrs. K. Vasumati Devi was nominated as the Samiti Mahila Coordinator and also as the District Bal Vikas Coordinator. She had the wonderful opportunity of serving Swami during his visit to West Godavari district. In 1981, she was nominated by Swami as the State Sevadal Coordinator. With Swami's blessings, with the blessings of Swami, she started an old age home, Sathya Sai Pavan Mahasadan in Iluru, which is running successfully and serving the aged people. She's still active in her service and is the coordinator of Andhra Pradesh and Telangana.
Calling forward next is Srimati Rani Lalita Umapati Rao, who is the only fortunate lady devotee to get to travel with Bhagwan in all his trips to holy places right from Kashmir to Kanyakumari. Even before Shivam was constructed, Bhagwan would first visit and stay at her residence before venturing out to other residences. Auntie had the rare privilege of organizing mass thread ceremonies and mass marriages at Prashantanilayam. Having blessed to have personal blessings from Swami, from time to time, she is a pillar of great strength for generations to emulate. Next is Dr. Goteti Saraswati Bai from Sai Saraswati Nursing Home, Amlapuram. In 1963, ma'am had the privilege of serving the Mother of the Lord, Mother Ishwaramma, for 15 days in West Prashanti, having daily visits by Swami. Actively involved in Bal Vikas and spiritual activities from the organization, she was nominated as the District Sevadal Coordinator. She is the founder trustee of Sri Sathya Sai Kalyan Mandapam, Amlapuram. She is currently the executive committee member of Sri Sathya Sai organization, East Godavari District. Coming up next is Professor Sita Lakshmi, retired professor of English, Prashantinilayam. Ma'am is a contributor to Bal Vikas and Education in Human Values program of the organization at district, state and national levels. Ma'am has been a speaker at various occasions at Sri Sai Kulwant Hall. As directed by Bhagwan, she was a trainer for Bal Vikas gurus of Tamil Nadu, Orissa and Bihar. Being blessed with many individual as well as group interviews, she has dedicated her life to spread the divine message and mission of Swami through various Telugu and English books. Putting your hands together now for Srimati Purvi Datta from Madhubani, Bihar, who is a double MA and PhD in psychology and music. Ma'am has worked as an announcer and singer at Vidyapati radio station. Ma'am has received a Rashtrapati award for folk song. round of applause to Mrs. Nimi Kanwar, our very own Nimi auntie, who has earned her graduation at the Delhi University. She has worked as a convener of Karol Bagh Samiti of Delhi and served as a state convener for Bal Vikas Delhi. She is an active worker in AHV Teacher Training Program, National Parenting Workshops. Ma'am is a faculty member of Sri Sathya Sai International Center for Human Values, New Delhi. There are countless memorable moments that she had with her beloved Swami, many of which are captured in her book. A Guru remembers her Sadguru, Bhagwan Sri Sathya Sai Baba.
This opportunity to thank each and every one of the awardees for their invaluable contribution in the field of service and their distinguished presence here today. Moving forward, we now have a treat for your eyes and ears. I request Ms. Saisha Saxena to take over and give us an introduction to the great musical presentation. Thank you.
Om Shri Sai Ram, pranams at the lotus feet of our beloved Lord and Master, Bhagwan Shri Sathya Sai Baba. India is a land which has given birth to many great women whose virtues and wisdom have been extolled through the centuries. Swami says, and I quote, Sita, Savitri, Gargi, Annasuya and Damayanti are women who are installed in the hearts of millions of people who worship them. They draw inspiration from them when confronted with calamity and crisis. They were full of unsullied love towards all who suffered. They were ready to serve the poor and distressed. They were so steady in their faith to God that they put up with direst misery in joyful submission to His will. Yes, dear devotees, women are the repositories of truth and culture. Though the earth is one, the plants vary depending upon the seed sown. The womb of the mother symbolizes the mother earth. As is the seed of thought sown in it, so is the fruit that it yields. Virtuous children are the product of good mothers who foster good thoughts, good words and good actions. Noble souls like Mahatma Gandhi and Ishwar Chandra Vidyasagar could attain great heights in their lives only due to the sacred feelings of their mothers. In today's musical entitled Nari Ek Shakti, we will be seeing glimpses of such noble women. It was because of such women of character that Bharat attained the reputation of being the land of plenty and prosperity and became the teacher of all the nations of the world. The Bhagavad Gita lists 7 attributes of the feminine principle: fame, prosperity, fine speech, wisdom, intelligence, valor, and forgiveness. Baba says, their speech is truthful. Their hearts are full of love and peace, and they are righteous. Women are the makers of the home, the nation, and the world. Women are indeed the pillars of a value-based society. Now, let me share with you a secret that Kamla Aunty might have mentioned in the morning. This musical, Nari Ek Shakti, was conceived in the year 1996. By Uncle Dev Kishan. But for reasons beyond control, the musical never saw the light of day. I think the divine providence wanted it to be staged today for the All India Mahila Conference. And so, more of this you will see now
in the musical entitled Nari Ek Shakti, presented by the students of Sri Sethi Sai Schools at Dharmakshetra and Aksa from the city of Mumbai, states of Maharashtra and Goa. Jai Sai Ram.
When the Lord sprinkled His showers of love, this beautiful universe came into existence. And the jewel of this creation is man. However, the crown jewel of this beautiful creation is undoubtedly the woman, the stri, the nari. The divine universal mother, the Jagat Janani, has manifested herself in the form of woman, the crown jewel of this universe. She as a Janani, the mother who takes different roles to instill values in her children, and she who gives and gives all the time. O mother of mine, you gave me all my life to do as I please. Dear mother, you gave me happiness. Mother, O sweet mother of mine, the woman, resplendent with all the qualities of the Divine Mother. And so, she is called Brahmamayi, Jyotirmayi, Premamayi, Adishakti, Mahashakti, Parashakti.
My child, I have filled you with the qualities of faith, intelligence, compassion, motherhood, peace, and mercy. My blessings are always with you.
So, brothers and sisters, the Sri Satya Sai schools at Dharmakshetra and Aksa in the city of Mumbai, the state of Maharashtra and Goa are privileged to present before you a musical entitled Nari Ek Shakti, Woman, the Storehouse of Power. Yes, dear brothers and sisters, let me introduce you to Lakshmi, a woman of conviction and Shakti, the divine energy.
Hello, is Shekhar there? All right. Namaste. Lakshmi, did you see the moon?
Yes, mother. I saw the moon, but the apple of your eye is missing.
Hello, Shekhar? Why aren't you coming home? Lakshmi has kept a fast for Karwa Chauth. Ah, is there a party going on? What? You'll be out till 2 in the night?
Don't rush home. It's not required. Come home at your leisure. 4 or 5 in the morning. It hardly matters.
Lakshmi, why did you hang up? It's not polite. Not correct at all.
Politeness? Respect? Huh. How does your son behave? He's never at home. He's like an owl. Flying off at night. And sleeping during the day. He doesn't care a wee bit about you, me or the house. I'm leaving. I'm going home to my mother's home. and I will return only if Shekhar changes his ways, his values, his relationships.
No, Lakshmi Beti, no. Please don't go. Wait. Wait, Beti. Wait.
Lakshmi. Lakshmi. Finish your rituals quickly. I'm sleepy.
Shekhar, go to bed now. Lakshmi has gone back to her mother's home.
Good riddance to bad rubbish.
Have some respect for your wife at least. She is my daughter-in-law.
Forget it, mother. Don't worry. I'll get you another daughter-in-law. Just let me make some more crores.
Oh my God! Why have you become such an irresponsible son?
Aimless in life? Aimless in your dreams? What are you searching for?
Lakshmi.
She left you and went away.
No, I'm not talking of my wife. I'm talking of Lakshmi. Money. Gold.
Yes, yes, son. I'm saying the same thing. Your wife Lakshmi. Wealth of your home. Hear what Mother Lakshmi says.
नारी रूप लिया मैंने नारी को देने सम्मान पर जहां नारी कोसी जाती वो घर नरक समान.
With your wayward ways, you have made your house into a living hell. So son, how can Lakshmi come to this hell?
What should I do?
Simple. Understand the qualities of a woman.
प्रेम भक्ति श्रद्धा की देवी नारी है महान इसकी पुकार सुनते ही आते हैं भगवान या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा नमस्तस्ये 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 नमो नमः कराम्बुजम् श्रोणिबिम्ब चलदम्बरम् भजत रासकेलि रसडम्बरम् रासकेलि रसडम्बरम् रासकेलि रसडम्बरम्
कृष्णा
माधवा
मधुसूदना
मनमोहना
ओ रसिया
ओ मन बसिया अरे नटखट
कहाँ छुपे हो सामने क्यों नहीं आते
कृष्णा रसिया मन बसिया
अखियां राह तक से थक गई अखियां नींद मेरी चुराई हो नींद मेरी चुराई हो रसिया मन बसिया सूरत गजल
Your yearning has brought me here. Why did you call out to me?
Yes, we called out to you.
To come and dance with us.
But there is a problem.
Problem? What is the problem?
We are so many, but you are just one.
Don't worry. I am the one who can become the many. Ekoham Bahusyam.
these gopis were full of true love and devotion. But is it the same today?
Today's women are the same. Their love and affection. Their loyalty is the same. But Shikhar, if you plant a neem tree, can you expect mangoes on it?
Pativrata dharm abhushan jiska buddhi jiska taj aisi nari ke samukh har mane yamraj ya devi sarv bhuteshu buddhi rupena sanstita namastasye namo namah.
Today completes a year. Is the sleep the final one? Wake up! Wake up, Lord! Please! Oh no! No! Seeing the radiance, the glow, the regal dress you don, you seem to be a divine being. Pray tell me, who are you and what brings you here?
Daughter, I am the Lord of Death, Yamraj. Your husband Satyavan's earthly life has ended today. I have now come to take him with me.
Salutations to you, Lord.
Dirghayu Bhava, may you have a long life, my child.
It is said that your attendants come to take the soul away. But this time you have come yourself?
Yes, Savitri. You are known for your Pativrata Dharma, for being an exemplary wife. And Satyavan was a pure man. So, how can I send my attendants? It is my privilege to come myself to take Satyavan with me. Savitri, prepare for his funeral.
Lord, I have always followed my husband's footsteps. So now also I will do so. If I turn back, my dharma as a Pativrata wife will be negated.
No, Savitri, this path is only for those who no longer live, whose life is over.
There is no life for me without my husband. Without my husband, my life is not worth living.
Be reasonable, Savitri. I cannot take you with me.
But a friend can go along with her friend.
Friend? Who is whose friend here?
It is said that if two people walk even 7 steps together, they become friends. And Lord, I have walked 700 steps with you.
Ha ha, Savitri, I am pleased with you. Ask me anything other than Satyavan's life and I will grant it to you.
My father-in-law is bereft of vision and has lost vitality in the body. I pray, please grant eyesight and strength in his body.
So be it. Savitri, you are tired. Now return to your home.
My husband is with you, right in front of me. So how can I get tired? I will go where my husband is being taken. O great one, it is said that if one has even a glimpse of a divine being, it is a good omen. One will gain a lot if one is friends with such a great person like you.
Aha! Great pleasing words, Savitri. But other than Satyavan's life, I will grant you any other boon.
Let my father-in-law regain his kingdom.
Tathastu, so be it. Now return, Savitri.
Every creature in the universe has a spark of divinity. So no one has the right to hurt another, either with his words or actions. Man should show compassion even to his enemy. One should always help ever and hurt never. So too, my father-in-law should be free of all enmity.
Like the Chataka bird waits for those drops of rain to quench its thirst, so too your words, Savitri. But other than Satyavan's life, ask for any other boon.
My father-in-law has no heir. Bless him with 100 sons.
Tathastu, Devi, tathastu. I have granted all your wishes. Now at least return home, Savitri.
My husband is with me, O Lord, so I am not tired at all. More so, when the Lord of Justice, Yamraj, who loves to give right judgment, is with me, I can walk along whatever be the distance.
Savitri, oh Savitri, you are praising me so much. Normally, people fear me, because wherever I go, I take away the life of a person. I can give anything to you except the life of Satyavan, Savitri. Go, quick, ask me one more boon quickly.
Lord, please give me 100 valiant sons with Satyavan.
So be it, tathastu, Devi, tathastu. Now at least return, Savitri. I will not listen to anything more.
Lord, now I won't say anything more. But can I not ask for justice from the Lord of Justice? Isn't it so, my Lord?
But of course.
Lord, please tell me, how can I give birth to 100 sons without Satyavan?
Oh my God! You caught me, Savitri. I have no option but to bless Satyavan with a long life. But I now shall take an oath that I will never again meet a woman who is a Pativrata.
You must agree with me about one thing. In those times, things were different.
Times may change, but human nature hasn't changed. Yes, priorities have changed. Money has taken the place of values, and falsehood reigns supreme.
Satya ki raah par chalne wali, satya ka deep jalati. सत्य की शिक्षा से बच्चों को क्या से क्या बनाती या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः.
Koyal is going. I can break my fast now. Mohan, did you finish your homework?
Yes, Mother. But tell me, you always break your fast after hearing the cooing of the koyal, isn't it?
Yes, Mohan.
But why, Mother?
So, God bestows the sweet voice of the koyal to my son.
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम.
Mother, it's almost 1 o'clock and you are still in prayer. You haven't broken your fast.
The koyal hasn't sung yet.
If it doesn't sing the whole day, then what?
Then I won't eat today.
Okay, then even I won't eat today.
Oh, then God will be angry with me for keeping you hungry.
Oh mother, don't do this ritual anymore. I don't need a coyote's voice. Even a crow's voice will do.
Mohan, come in. Have your lunch.
Coo! Coo!
Mohan, I have failed in your upbringing. You turned out to be a liar.
Mother!
Quiet! Don't ever call me your mother. I told you stories from the Vedas and Puranas so that you may imbibe those values. But alas, in vain. I told you the story of Raja Harishchandra so that you learn that truth is the crown jewel of all virtues. But yet you told me a lie.
But mother, you were fasting.
Mohan, one day of fasting is good. I would not have died. But you telling me a lie has made me die 100 deaths.
Mother, mother, please forgive me. I will never ever speak a lie in future. I will never lie. I will never lie.
Promise me.
Mother, I take an oath. I will never lie.
Listen, son. There is no greater sin than untruth.
Yes, mother. I will always remember it. Henceforth, truth will be my companion for life.
Great was Mahatma Gandhi's mother Putlibai.
So also was the mother of Ishwar Chandra Vidyasagar, whose heart was full of compassion, a true mother.
Daya tyag ki murat nari, kya kya de balidan, apne sukh ko chhod, kare auro ka kalyan. Ya
Your mother, finally I have got a gift for you.
A gift?
Yes, mother. Now I have made it big and we will be meeting important people.
Big, huh? Oh, you have grown taller, but your height is the same.
Mother, look, I have got gold bangles and a jewelry set with earrings and a chain for you.
Jewelry?
Yes, mother. Money makes me an important person.
Never thought that money makes a man great, special.
Mother, stop joking. At least pick up some pieces of jewelry.
I want only 3 sets of ornaments.
3 sets? Wonderful. Pick up whatever you like. I can always pay later.
Son, this jewelry will not please me. But I want such ornaments that will please everyone.
What are you talking about, mother?
Listen, my son. The children of our village have to walk at least 2 miles to attend school every day. Build a school in our village. This is my first ornament. I want you to make this first for me.
And the second?
Open a dispensary with a doctor attached to it. A dispensary that dispenses medicines free of cost to one and all.
And the third ornament, mother?
Build a rest house for weary travelers so that people passing through the village can rest for the night. You know, they have to spend their nights sleeping under trees in the open. A rest house, a dharmshala, is required.
Mother, You have opened my eyes. I will certainly give you these three ornaments. I promise you, mother.
Yes, my son. Life led in service to others is truly a meaningful life. Service is real devotion, real penance. Manav Seva is Madhav Seva.
So, Shekhar, have you understood what I have been trying to teach you?
Yes, yes.
Realize that a woman is the embodiment of virtues. Virtually, a treasure trove. She is a manifestation of the Divine Mother. Treat her with love and respect. Lakshmi is your Ardhangini. It is she who will fill your life with peace and contentment. Practice what I talked about, Shekhar. Nariye Jeevan Gauravamu.
You have opened my eyes. But who are you? Please tell me.
You still haven't realized, Shekhar. Ask Lakshmi and your mother, Shekhar. I take different forms when I come to correct, to guide, to transform. My only weapon is love. Love. Love.
Lakshmi? Lakshmi?
Now, what have you come for?
To ask your forgiveness.
You asking forgiveness? Amazing!
I feel ashamed that I had not realized the value of women. Especially you, Lakshmi.
I'm glad that you realized it. How did this change happen?
I had a wonderful dream showcasing the lives of great women, talked about by a saint.
A saint?
Yes. When I asked him who he was, he just laughed and said, "Ask Lakshmi or your mother." He also said another strange thing, that his weapon is love.
Swami, Swami, Shekhar, our family's Aradhya Devta, Bhagwan Shri Satya Sai Baba, came as a saint?
I did not know.
Do you know anything of Swami? He is God incarnate. Do you know who his mother was?
No.
Ishwarama was the mother of our beloved Swami, the Lord of the Universe, the Jagat Guru. Ishwarama, a right name for her. Ishwara, Amma, the mother of Ishwara. Talks about mother, motherland and mother tongue. He was passionate about our motherland Bharat. Do you know, Shekhar? Ordinary women have made extraordinary sacrifice for the freedom of our country. Listen to this incident.
This little girl was truly the daughter of motherland Bharat. Once upon a time, in a small remote village in the northeastern part of India, the elders of the village, out of sheer love for motherland Bharat, decided that they also had to do something. They got together and decided that in the evening at 6 o'clock, they would all carry the national flag and hoist it at the flag post of the village police station. They all sat together and started deciding on the plan of action. They decided that since their attempt was going to be thwarted by the police and there was likelihood that they would be shot down, they would form rows of people. And as the rows proceeded, if at all they were shot down, the national flag would be handed over to the row behind. While this planning was on, the little girl asked the elders,
"Uncle, can I also join in this march?"
"No, beta. This is not meant for small children. Only the elders will take part, because there is a danger to life."
"But I can also die for my motherland."
"Not now."
And thus, the plan of action was set. At the appointed time, at 5:31 in the evening, all the elders of the village gathered opposite the police station. And as per the plan, five rows of people, one after the other, stood facing the flag post. The front row having the flag in its hand. And as per the action plan, the first row moved slowly and steadily towards the flag post.
Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram.
And as the row proceeded further, the shower of bullets from the guns of the British soldiers opened and pierced the chest of each and every one in the front row. But as they fell down, the last man with the national flag in his hand turned back and handed over the flag to the next row of people.
Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram.
The third row moved forward and there was a shower of bullets. The fourth row moved forward and once again a shower of bullets. The fifth row moved forward and once again a shower of bullets. But the man in the fifth row, as he was holding the flag in his hand, he realized that there was no row behind him which can take the flag to the post. And this was the last row. The little girl ran towards the last uncle and took the national flag from his hand and said,
"Uncle, don't you worry. I am not scared of the bullets. I will take the flag to the post. Vande Mataram! Vande Mataram! Vande Mataram!"
And the young girl, boldly and with great conviction, exemplar of being a daughter of the great motherland Bharat, moved forward. Boldly, as she stepped one step at a time, she nearly reached a few inches away from the flag post. While she was moving, the policemen were wondering, would they shoot a little girl? But no. Lo and behold, as she was a few inches away from the flag post, the police opened fire. And several bullets pierced the young chest of this young little girl.
"Ma! Ma! Oh, Ma! Ma!"
She realized that she was just a few inches away from the post.
"Ma! Help me, Ma! I have to reach the post and the flag cannot touch the ground.
And
help
the only
me,
way
Ma.
She found was a unique way. She put the flag into the hole of the bullet in her chest.
Vande Mataram! Vande Ma!"
The ultimate sacrifice.
Yes, Shekhar. Another thing, we always call Swami our Mother Sai, for he showered upon us the love of a thousand mothers. Salutations to Mother Sai. Vande Sai Ma!
Gopala, Venugopala, Venugopala, Venugopala. Good. समस्त लोका सुखिनो भवन्तु